नमस्कार, चालू घडामोडी या सत्रात मी तेजल आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. जाणून घेऊया आजची पहिली घडामोड. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी पंतप्रधान ई कोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत विविध नवीन उपक्रमांचा शुभारंभ करत होते. या प्रकल्पाद्वारे याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायव्यवस्था यांना माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा प्रदान करण्यात आली. व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाईल ॲप 2, डिजिटल कोर्ट आणि S3 वास या संकेतस्थळांचा पंतप्रधान शुभारंभ करत होते. यानंतरची बातमी. संगीत नाटक अकादमीने 2019-2020 आणि 2021 या वर्षांसाठी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांची घोषणा केली. या पुरस्कारासाठी 128 कलाकारांची निवड करण्यात आली, तर कलाक्षेत्रातील 10 नामवंत व्यक्तींची अकादमी सह अध्यायी म्हणून निवड करण्यात आली. अकादमी सहा अध्यायींच्या पुरस्काराचं स्वरूप 3 लाख रुपये आहे, तर ताम्रपत्र, शाल आणि 1 लाख रुपये असं अकादमी पुरस्काराचं स्वरूप आहे. हे पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते एका विशेष समारंभात प्रदान केले जातील. राज्यातील विविध नामवंत कलाकारांचा यात समावेश आहे. प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर, आरती अंकलीकर टिकेकर, कथक नृत्यगुरु डॉक्टर नंदकिशोर कपोते, क्षमा भाटे, प्रसिद्ध अभिनेता प्रशांत दामले, दिग्दर्शक कुमार सोहोनी, कठपुतली कला प्रकारात पारंगत असलेल्या मीना नाईक यांना हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला. पुढील बातमी आहे. कला संस्कृतीचं माहेरघर असलेल्या पुण्यात व्यापार, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रही विकसित झाली, त्यामुळे पुण्याच्या विकासाला प्राधान्य राहील अशी ग्वाही केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिली. पुण्यातील लोहगाव विमानतळावर उभारलेल्या एरोमॉल मल्टीलेव्हल कार पार्किंगचं उद्घाटन शिंदे यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार गिरीश बापट, वंदना चव्हाण, आमदार सुनील टिंगरे यावेळी उपस्थित होते. लोहगाव विमानतळावरून आता आंतरराष्ट्रीय विमानांची उड्डाणे होऊ लागली. अमेरिका आणि युरोपसाठी देखील भविष्यात प्रयत्न केले जातील. लोहगाव विमानतळावर नवीन टर्मिनल इमारतीचं काम 70% पूर्ण झालं असून पुढच्या वर्षी मे पर्यंत ही नवीन टर्मिनल इमारत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल. इथं इंटिग्रेटेड कार्गो टर्मिनलची देखील सुविधा असेल. येत्या 1 डिसेंबर पासून पुणे सिंगापूर विमान सुरू होईल अशी माहिती ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिली. तत्पूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल इथं युवा मतदारांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. पुढील बातमी आहे. भारत आणि फ्रान्सच्या दरम्यान चौथ्या संरक्षण विषयक 3 दिवसांच्या परिषदेला नवी दिल्ली इथं सुरुवात झाली. फ्रान्सचे संरक्षण दल मंत्री सॅबेस्टिन लेकुर्नो या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग या बैठकीचे सह अध्यक्ष आहेत. परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर S.जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची लेकुर्नो भेट घेणार आहेत. तसंच कोची इथल्या दक्षिणी नौदल कमांड मुख्यालयाला ते भेट देणार असून भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांतची पाहणी करणार आहे. यानंतर चिघडामोड. भारताचा इतिहास म्हणजे गुलामगिरीची कहाणी नसून शौर्य, त्याग आणि निर्भयतेची गाथा आहे असं प्रधानमंत्री म्हणाले. आसाममधल्या अहोम सेनापती लचित बारफुकन यांच्या 400व्या जयंती महोत्सवाचा सांगता समारंभ दिल्लीत झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. लचित बारफुकन यांनी आपल्या देशभक्तीची शिकवण दिल्याचं ते म्हणाले. तलवारीच्या जोरावर भारताचा शाश्वत वारसा मिटवू पाहणाऱ्यांना कडक उत्तर देणं भारताला चांगलंच जमतं असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. लचित बारफुकन हे मूर्तिमंत शौर्याचं प्रतीक आहे अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पुढील बातमी आहे. चंद्रपूरच्या वनप्रबोधिनीने बोलणारं झाड हा अभिनव उपक्रम राबवला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते वनप्रबोधिनीच्या परिसरात नुकतंच या उपक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं. झाडाची संपूर्ण माहिती, त्याचे उपयोग आदी बाबी जाणून घेण्यासाठी चंद्रपूरच्या वनप्रबोधिनीने टॉकिंग ट्री म्हणजे बोलणारं झाड हा उपक्रम राबवून झाडावर त्यासंदर्भातला QR कोड विकसित केला. या QR कोडच्या माध्यमातून आता झाड स्वतःच स्वतःबद्दलची माहिती देणार आहे. यामुळे विविध प्रजातींची झाडं आता मोबाईलद्वारे ओळखता येतील. प्रत्येक प्रजातीची सविस्तर माहिती दृकश्राव्य माध्यमातून उपलब्ध होईल. वनप्रबोधिनी परिसरातील प्रत्येक झाडावर पाटी स्वरूपात QR कोड लावला जाईल. टॉकिंग ट्री या मोबाईल ॲपद्वारे QR कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित झाड स्वतःबद्दल विविध भाषांमध्ये माहिती देईल. प्रबोधिनीच्या परिसरात विविध प्रजातींची झाडं आणि परिसरातील जैव विविधतेबद्दल अधिकाधिक माहिती जाणून घेणं यामुळे आता शक्य होणार आहे. पुढील बातमी. 13व्या अॅग्रोव्हिजन प्रदर्शनाला नागपूरमध्ये सुरुवात झाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून गेल्या 12 वर्षापासून हा उपक्रम राबवला जात आहे. दरवर्षी येणाऱ्या नवनवीन संकल्पना, त्याचा प्रत्यक्ष क्षेत्रात वापर, शेतकऱ्यांना झालेला लाभ आदींची माहिती गडकरी यांनी उद्घाटन प्रसंगी प्रास्ताविकातून दिली. आगामी काळात दाभा इथं 150 कोटी रुपये खर्चून भव्य कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यात येईल. तसंच वर्धा रोडवर अॅग्रोव्हिजनचं कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सेंद्रिय उत्पादनांसाठी स्वतंत्र मॉल स्थापन करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं. या कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान उपस्थित होते. अॅग्रोव्हिजन हे शेतकऱ्यांचं राहणीमान बदलण्याचे तंत्र आहे, अशा शब्दात त्यांनी अॅग्रोव्हिजनचा गौरव केला. पुढील बातमी. अवकाळी पावसानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या काही भागात हजेरी लावली. कुडाळ तालुक्यात ओरोस, कसाल, पणदूर, हुमरमळा, डिगस, सह्याद्रीच्या काही भागात तसेच सावंतवाडी शहरासह आसपासच्या परिसरात जोरदार पाऊस पडला. या पावसाचा फटका आंबा, काजू, मोहराला बसण्याची शक्यता आहे. सातारा जिल्ह्यातल्या विविध भागातही वातावरण ढगाळ असून काही भागात थोडा वेळ हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडला. मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडला. येत्या 2 दिवसात कोकणात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. याच कालावधी ते राज्यात इतरत्र हवामान कोरडं राहील असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. पुढील बातमी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी नवी दिल्लीत कथाकारच्या 15व्या सत्राचं उद्घाटन करत आहे. हा कार्यक्रम सेंटर व्हिस्टा इंडिया गेट इथं पार पडला. कथाकथनाचे कार्यक्रम दिल्लीतील सुंदर नर्सरी, हेरिटेज पार्क, सेंट्रल व्हिस्टा, इंडिया गेट इथं झाले. युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, इस्रायल, सिएरा लियोन आणि कोरिया या देशांमधील भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय लेखकांच्या विविध कथा आणि संगीत या महोत्सवात सादर केलं गेलं. पुढील बातमी. केंद्र सरकारनं सुधारित प्राण्यावरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विधेयक 2022 मसुदा प्रकाशित केला असून तो सार्वजनिक सूचनांसाठी खुला आहे. या मसुद्यात 61 दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. क्रूरतेच्या नवीन श्रेणीत पाशवी वर्तन हा गुन्हा म्हणून समाविष्ट करण्यात आला असून प्राणी मारल्यास जास्तीत जास्त 5 वर्षांच्या कारावासासह किमान 75,000 रुपये दंडाची तरतूद आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात कलम 3 अ अंतर्गत तहान, भूक, कुपोषण, भीती आणि त्रासापासून मुक्तीसह प्राण्यांच्या 5 स्वातंत्र्य हक्काचा समावेश आहे. यामध्ये वन्य प्राणी वगळता असे सामुदायिक प्राणी ज्यांच्यावर कोणाचाही मालकी हक्क नाही अशा प्राण्यांनाही मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. सामुदायिक प्राण्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी स्थानिक सरकारांची असेल असं या मसुद्यात आहे. पुढील घडामोड. G20 शिष्टमंडळ पोर्टब्लेअर इथं भारतातील G20 देशांच्या मंडळ प्रमुखांच्या चर्चेसाठी आलं. पोर्टब्लेअरमध्ये G20 शिष्टमंडळाचं जोरदार स्वागत झालं. त्यांच्या आगमनानंतर लगेचच शिष्टमंडळानं राष्ट्रीय स्मारक असलेल्या सेल्युलर जेल या राष्ट्रीय स्मारकाला भेट दिली. माजी परराष्ट्र सचिव आणि G20 मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन सिंग यांना नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि G20 शेर्पा अमिताभ कांत या शिष्टमंडळात सहभागी झाले. G20 मधील भारताच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास पोर्टब्लेअरमधील सेल्युलर जेल इथं सुरू होत आहे ही संपूर्ण देशासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. इथं तुरुंगवास भोगलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या शौर्याचं आणि सेवेचं स्मरण करतो असं अमिताभ कांत यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं. पुढील घडामोड. उस्मानाबाद इथं आयोजित 55व्या राष्ट्रीय खो खो स्पर्धेत यजमान महाराष्ट्राच्या महिला खो खो संघानं विजेतेपद कायम राखलं. अंतिम सामन्यात त्यांनी भारतीय विमान प्राधिकरण संघावर 11-9 डावानं शानदार विजय मिळवला. महाराष्ट्राच्या महिला संघाचं हे 23वं विजेतेपद आहे. पुरुषांमध्ये भारतीय रेल्वेनं यजमान महाराष्ट्रावर 14-12 असा 45 सेकंद राखून विजय मिळवला. रेल्वेचं हे 11वं विजेतेपद आहे. भारतीय खो खो महासंघ आणि महाराष्ट्र खो खो असोसिएशन यांच्या मान्यतेनं उस्मानाबाद जिल्हा खो खो असोसिएशननं ही स्पर्धा आयोजित केली. महाराष्ट्राची अपेक्षा सुतार राणी लक्ष्मीबाई पुरस्काराची मानकरी ठरली तर रेल्वेचा अक्षय गणपुले एकलव्य पुरस्काराचा मानकरी ठरला. पुरस्कारप्राप्त पुरुष आणि महिला खेळाडूंना उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेतर्फे प्रत्येकी 5,000 पारितोषिक देण्यात आलं. पुढील घडामोड. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ऑकलंड इथं झालेल्या मालिकेतल्या पहिल्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा 7 गडी राखून सहज पराभव केला. 3 सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. विजयासाठी 307 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेल्या न्यूझीलंडनं 48व्या षटकातच लक्ष पूर्ण केलं. त्यांची 3 बाद 309 अशी धावसंख्या झाली. टॉम लॅथमननं न्यूझीलंडसाठी 104 चेंडूत 145 धावांची खेळी केली. तो नाबाद राहिला. त्यालाच सामनावीराचा सन्मान मिळाला. केन विल्यमसननं 94 धावा करून सुरेख साथ दिली. तत्पूर्वी भारतानं 50 षटकात 7 गडी बाद 306 धावा केल्या. श्रेयस अय्यरनं 76 चेंडू त्यांची धावा केल्या. शिखर धवननं 72, शुभम गिलनं 50 धावा करून भारताच्या धावसंख्येला आकार दिला. पुढचा एक दिवसीय सामना हॅमिल्टन इथं होणार आहे. यानंतरची क्रीडा घडामोड. फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत ब गटातल्या सामन्यात इराणनं वेल्सवर 2-0 गोल फरकानं विजय मिळवला. रोमांचक सामन्यात शेवटच्या मिनिटाला रोजबेह छेचमी आणि रामीन रेझेयान यांनी प्रत्येकी एक एक गोल करत इराणला विजय मिळवून दिला. कतार आणि सेनेगल यांच्यात अ गटातला सामना झाला. तिसरा सामना अ गटात नेदरलँड्स आणि इक्वेडोर यांच्यात होणार आहे. विद्यार्थ्यांनो, आज अशा पद्धतीनं आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. धन्यवाद.
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 26 नवंबर 2022. मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था. एमएसएमईज को नकदी प्रवाह ऋण देने की सुविधा के लिए GSTNAA नेटवर्क में शामिल. MSMEs को नकदी प्रवाह आधारित ऋण को बढ़ावा देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर AA ढांचे के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता FIP के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN को जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इस विशेष उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग GSTN को विनियमित करेगा और वित्तीय जानकारी माल और सेवा कर GST रिटर्न होगी, अर्थात प्रपत्र GSTR1 और प्रपत्र GSTR3B1. MSMEs को नकदी प्रवाह आधारित ऋण देने को आसान बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस नेटवर्क GSTN को वित्तीय सूचना प्रदाता FIP के रूप में जोड़ने पर सहमति हुई है. आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय. भारत के केंद्रीय बैंक और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में संभावित व्यापार. रुपए और दिरहम में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने पर एक अवधारणा पत्र पर अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंकों द्वारा चर्चा की जा रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक लेन देन की लागत कम करने के लिए रुपए और दिरहम में द्विपक्षीय वाणिज्य को प्रोत्साहित करने पर एक अवधारणा पत्र पर बहस कर रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए अवधारणा पत्र साझा किया था. मानक संचालन प्रक्रियाओं और तौर तरीकों पर दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा चर्चा की जाएगी. आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग. बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली मध्य कॉरपोरेट शाखा खोली. केरल में कोच्चि में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पहली मध्य कॉरपोरेट शाखा खोली. कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद ने शाखा खोली. एस रंगराजन GM हेड मिड कॉरपोरेट क्लस्टर साउथ और श्रीजीत कोटराथिल जोनल हेड एर्नाकुलम की उपस्थिति में देवदत्त चंद कार्यकारी निदेशक ने शाखा खोली. मिड कॉरपोरेट वर्टिकल रुपए तक की क्रेडिट सुविधाओं की मांग करने वाली कंपनियों को पूरा करता है. 250 करोड़, जबकि बड़े कॉरपोरेट वर्टिकल इससे ऊपर का कारोबार संभालते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय. चीन और कतर ने सबसे लंबे गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए. जैसा कि यूरोप वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे सबसे लंबा कभी देखा गया है. जैसा कि यूरोप वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. चाइना पेट्रोलियम एवं केमिकल कॉरपोरेशन को राज्य ऊर्जा कंपनी की नई नॉर्थ फील्ड ईस्ट परियोजना से प्रति वर्ष 4 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी. आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल. नारायण जगदीशन ने सबसे ज्यादा लिस्ट ए मार्क का रिकॉर्ड तोड़ा. बैंगलोर में चिन्नास्वामी में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते समय तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने 141 गेंदों पर 277 रन बनाकर पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ग्रुप सी मैच को 435 रनों से जीतने से पहले इस स्तर पर सबसे बड़ी जीत का अंतर तमिलनाडु लिस्ट ए क्रिकेट में 500 अंकों को पार करने वाली पहली टीम बन गई। पिछला निशाना डेवॉन की 1990 में समरसेट पर 346 रन की जीत थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। दूध के महत्व और लाभों को दर्शाने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस एक विशेष दिन है जो लोगों में दूध के महत्व और आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म की वर्षगांठ पर, जिसे कभी कभी श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर मानव जीवन में दूध के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर मस्कट में तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन। एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर इस वर्ष का तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन 24 और 25 नवंबर को मस्कट, ओमान में होगा। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गति को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध प्रत्युपायों को बढ़ाना। द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन 2022 में सम्मेलन का विषय होगा। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य पहल के बारे में चर्चा का अवसर प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। कुकी चिन बांग्लादेशी शरणार्थी मुद्दा। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चिन राष्ट्रीय सेना KNA के बीच चल रही लड़ाई के कारण कुकी चिन शरणार्थियों की बाढ़ भारतीय राज्य मिजोरम में प्रवेश कर गई। दक्षिणी बांग्लादेश में चटगांव हिल ट्रैक्स CHT में एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए 2008 में स्थापित एक अलगाववादी संगठन कुकी चिन नेशनल फ्रंट KNF में कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA नामक एक सशस्त्र घटक है। KNF के अनुसार सभी बावम, पुंखुआ, लुशाई, खूमी, म्रो और ख्यांग नागरिक बड़ी कुकी जिन जाति के सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नौवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी बनेंगे डेलॉयट इंडिया के CEO। फर्म के भागीदारों को देर से जारी एक ईमेल के अनुसार वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी को एक महीने की लंबी चयन प्रक्रिया के बाद डेलॉयट इंडिया का CEO नामित किया गया है। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद नामांकन समिति ने शेट्टी का चयन किया, जो भारत में डेलॉयट के परामर्श व्यवसाय के प्रभारी है। इसके भारतीय इक्विटी भागीदारों को अगले कदम के तौर पर उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि करनी होगी। रोमल शेट्टी के पास व्यापार और प्रौद्योगिकी डोमेन को कवर करने वाले बड़े पैमाने के परिवर्तन कार्यक्रमों में सलाहकार सेवाओं में 20 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने जोखिम और परामर्श डोमेन में 30 से अधिक देशों में काम किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। फ्लिपकार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ। भारत में निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक और भारत में स्वदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने मिलकर सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इस कार्ड का उद्देश्य फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का विस्तार करना और ग्राहक के खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना है। प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के पास अब अनलॉक करने और इस साझेदारी के लिए विशेष पुरस्कारों का लाभ उठाने का एक और मार्ग है। लॉयल्टी प्रोग्राम को ग्राहक संबंधों को पोषित करने, डिजिटल खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने और बढ़े हुए मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से बनाया गया था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 26 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 26 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। किस राज्य ने सबसे पहले महानिदेशक लेखा परीक्षा का पद स्थापित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेखा परीक्षा के महानिदेशक की स्थिति शुरू में भारत के एक राज्य तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। इस पद के लिए राज्य ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। अधिकारी के कर्तव्यों में राज्य के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागों के संचालन को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना शामिल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का संस्करण क्या है जो 21 नवंबर को करावांग पश्चिम जावा इंडोनेशिया में चल रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति का 8th पुनरावृत्ति 21 नवंबर 2022 को करावांग पश्चिम जावा इंडोनेशिया में संगगा बुआना प्रशिक्षण सुविधा में चल रहा है। वर्तमान में करावांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बल और भारतीय विशेष बल के सैनिकों का एक दल 13 दिवसीय कठोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में 22 नवंबर को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, मुंबई महाराष्ट्र में KVIC केंद्रीय कार्यालय में 1993 बैच के एक IRSEE इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी विनीत कुमार ने संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नेतृत्व ग्रहण किया। KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MoMSME की एक एजेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ। कौन सा राष्ट्र चिन कुकी मिजो जातीय समुदायों से जुड़ा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA और बांग्लादेशी सुरक्षा बल लड़ रहे हैं और चिन कुकी जातीय समूह के आदिवासी सदस्य बांग्लादेश से भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने घोषणा की कि वह बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले 274 आदिवासी बांग्लादेशियों को अस्थायी आश्रय, भोजन और राहत प्रदान करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पाँच की तरफ। किस राष्ट्र ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, मानव रहित आर्टिमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने अपना पहला मून फ्लाईबाई सफलतापूर्वक पूरा किया। 130 किलोमीटर इसे चंद्र सतह से अलग करता है। चंद्रमा से अपने सबसे दूर के बिंदु पर ओरियन ने अपोलो 13 द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 57,287 मील से अधिक की यात्रा की होगी। चंद्रमा से परे ओरियन एक दूर की प्रतिगामी कक्षा शुरू करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन टर्शील्ड सबसे पहले किस देश द्वारा चलाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, CITES के COP19 में पक्षकार बाटागुर कछुगा मीठे पानी के कछुए को संरक्षित प्रजातियों की सूची में जोड़ने के भारत के प्रस्ताव से सहमत थे। CITES ने मीठे पानी के कछुओं के अवैध शिकार और अवैध बिक्री को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की एक पहल ऑपरेशन टर्ड शील्ड की सफलता के लिए सरकार की प्रशंसा की। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में किस राष्ट्र की पहचान की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, रूस को यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में लेबल किया गया है। इसने दावा किया है कि यूक्रेन में असैन्य लक्ष्यों जैसे अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों पर हमला करके यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा था। एक सहायक विधायी ढांचे की कमी के बावजूद यूरोपीय संघ ने पहले ही यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर अभूतपूर्व दंड लगाया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 8 की तरफ। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ साझेदारी की, फर्स्ट ऐप स्टिकर प्रणाली के साथ भारत का पहला डेबिट कार्ड पेश किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट ऐप भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा पेश किया गया था, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC के साथ पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन को सक्षम बनाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। 2022 वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस का फोकस क्या था, जिसे दुनिया भर में 16 नवंबर को चिन्हित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 नवंबर 2022 हर साल नवंबर में तीसरा बुधवार दुनिया भर के लोगों ने दुनिया में सबसे आम बीमारियों में से एक के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस मनाया। 2022 में विश्व COPD दिवस जीवन के लिए आपके फेफड़े पर केंद्रित होगा। 20 नवंबर 2022 को पहला विश्व COPD दिवस मनाया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवंबर 2022 में अनीमिया उन्मूलन के लिए एमलान AMLAN अनीमिया मुक्त अभियान मिशन शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए अम्लान अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान अनिवार्य रूप से शुरू किया। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 26 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तेजल वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द 2 डेज डेली करंट अफेयर अपडेट्स। आवर फर्स्ट अपडेट इज इट हैज बीन डिसाइडेड टू ऐड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक नेटवर्क एज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर अंडर द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू प्रमोट कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग टू MSMEs. फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पोज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू शेल रेगुलेट द GSTN एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेल बी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स Returns namely firm GSTR1 and firm GSTR3B. It has been agreed to add the Goods and Services Tax Network as a financial information provider under the account aggregator in order to make cash flow based lending to MSMEs easier. Next update. A concept paper on fostering cross-border trade in rupee and dirham is now being discussed by the Central Banks of India and the UAE. According to a senior official, the Central Banks of India and the UAE are debating a concept paper on encouraging bilateral commerce in rupee and dirham in order to lower transaction cost. Sanjay Sudhir, India's ambassador to the UAE, stated that India had shared the concept paper for trade in local currencies. The standard operating procedures or modalities will be discussed by the central banks of both nations. Next update. In Kerala, at Kochi, Bank of Baroda opened its first mid-corporate branch. Executive Director Deba Datta Chand opened in the branch. In Kerala, at Kochi, Bank of Baroda opened its first mid-corporate branch. In the presence of S. Rengarajan, GM, Head, Mid-Corporate Cluster South, and Shrijit Kottarathil, Zonal Head, Ernakulam, Deba Datta Chand, Executive Director, opened the branch. The mid-corporate vertical caters to companies seeking credit facilities of up to Rs. 250 crores, while the large corporate vertical handles business above that. Next update. As Europe looks for alternate sources, Qatar Energy signed a 27-year natural gas supply agreement with China, describing it as the longest ever seen. As Europe looks for alternate sources, Qatar Energy signed a 27-year natural gas supply agreement with China. Describing it as the longest ever seen. द चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन विल रिसीव 4 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ईयर फ्रॉम द स्टेट एनर्जी कंपनीज न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट. Fifth update, when playing Arunachal Pradesh in the Vijay Hazare Trophy at the Chinnaswamy in Bangalore, Tamil Nadu batsman Narayan Jagdishan scored 277 off 141 balls, shattering the previous record for the highest individual score in men's list A cricket. Before winning the Group C match by 435 runs, the greatest victory margin at this level, Tamil Nadu became the first team to surpass the 500 mark in list A cricket. The previous mark was Devon's 346-run victory over Somerset in 1990. Next update, National Milk Day is celebrated on 26th November every year to signify the importance and benefits of milk. Milk Day is a special day that is observed to spread awareness among people about the importance and need for milk. On the anniversary of Dr. Varghese Kurian's birth, sometimes referred to as the Father of the White Revolution, National Milk Day is observed. The significance of milk in human life is highlighted on National Milk Day. Seventh update, this year's third global high-level conference on antibiotic resistance took place in Muscat, Oman. On November 24 and 25, the third global high-level conference on antimicrobial resistance intends to advance international cooperation on this topic and speed up antimicrobial resistance countermeasures at the national, regional and global levels. This AMR from Policy to One Health Action will be the conference theme in 2022. It offers a chance for discussion about One Health initiative to deal with the problem of antibiotic resistance. Next update, an influx of Kukichin refugees enter the Indian state of Mizoram due to the ongoing battle between Bangladeshi security forces and the Kukichin National Army. The Kukichin National Front, a separatist organization founded in 2008 to establish a separate state in the Chittagong Hill Tracts in southern Bangladesh, has an armed component called the Kukichin National Army. All born Pungkhua, Lushai, Khumi, Ro and Khyang citizens according to the KNF are members of the larger Kukichin race. Ninth update, senior consultant Romal Shetty has been named CEO designate of Deloitte India following a months-long selection process. After weighing a number of options, the nomination committee settled on Shetty, who is in charge of Deloitte's consulting business in India. Its Indian equity partners will need to confirm his candidacy as the next step. Romal Shetty has 20 years of experience in advisory services across large-scale transformation programs covering the business and technology domain and has worked in over 30-plus countries across risk and consulting domain. Next and last update, the third largest private sector bank in India, Axis Bank, and the Flipkart, indigenous e-commerce platform in India, have teamed together to introduce the Super Elite credit card. The purpose of this card is to scale Flipkart Supercoins rewards program and improve the customer purchasing experience. Customers on the platform now have yet another route to unlock and take advantage of special rewards thanks to this partnership. The loyalty program was created with a vision to nurture customer relationships and enhance the digital shopping experience. Dear friends, this was our daily current affairs updates. For more such updates, do stay tuned to us. Thank you. Hello friends, Tejal welcoming all of you to the today's daily current affairs quiz in English. First question of the quiz is, which state established the position Director General of Audit first? Answer is Tamil Nadu. The Director General of Audit position was initially established in Tamil Nadu, a state in India. For this position, the state has deputized one officer from the Indian Audit and Accounts Service. The officer's duties will include enhancing and streamlining the state's internal audit division's operations. Next question. What is the edition of Garuda Shakti bilateral joint training exercise between India and Indonesia that got underway on November 21st at Karawang, West Java, Indonesia? Correct answer is 8th. The 8th iteration of the bilateral joint training exercise Garuda Shakti between Indonesia and India got underway on November 21, 2022 at the Sangabuana Training Facility in Karawang, West Java, Indonesia. Currently in Karawang, Indonesia, Indonesian Special Forces and contingent of Indian Special Forces soldiers are undergoing a rigorous 13-day training course. Third question. Who was recently appointed Chief Executive Officer of Khadi and Village Industries Commission in November 2022. करेक्ट आंसर इज विनीत कुमार एट द KVIC सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र. विनीत कुमार एन IRSEE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स ऑफिसर फ्रॉम द 1993 बैच अज्यूम्ड लीडरशिप एज द ऑर्गनायझेशन्स चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. KVIC इज एन एजन्सी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ मायक्रो स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस. फोर्थ क्वेश्चन, विच नेशन इज कनेक्टेड टू द चीन कुकी मिझो एथनिक कमिटीज. करेक्ट आन्सर इज बांगलादेश. द कुकी चीन नॅशनल आर्मी अँड बांगलादेशी सिक्युरिटी फोर्सेस हॅव बीन फायटिंग अँड ट्रायबल मेंबर्स ऑफ द चीन कुकी एथनिक ग्रुप आर फ्लिंग बांगलादेश. द मिझोरम गव्हर्नमेंट डिक्लेअर दॅट इट विल ऑफर अप टू 274 ट्रायबल बांगलादेशीज हू हॅड एंटर्ड बांगलादेश टेम्पररी शेल्टर फूड अँड रिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन कॅरीड आउट द ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च. करेक्ट आन्सर इज USA एज पार्ट ऑफ द अनमॅन्ड आर्टेमिस 1 मिशन. नासाज ओरियन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली कम्प्लिटेड इट्स फर्स्ट मून फ्लाय बाय 130 किलोमीटर्स सेपरेट इट फ्रॉम द लुना सर्फेस ॲट इट्स फर्दस्ट पॉइंट फ्रॉम द मून. ओरियन विल हॅव ट्रॅव्हल्ड मोर दॅन 57,287 माइल्स ब्रेकिंग द प्रिव्हियस रेकॉर्ड हेल्ड बाय अपोलो 13. बियॉन्ड द मून ओरियन विल बिगिन अ फार ऑफ रेट्रोग्रेड ऑर्बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेशन वॉज ऑपरेशन टर्ट शील्ड फर्स्ट रोल्ड आउट. आन्सर इज इंडिया. The parties in COP19 of sites agreed with India's proposal to add the Batagur Kachuga freshwater turtle to the list of protected species. Sites also praised the government for the success of Operation Turtshield, an initiative of the Wildlife Crime Control Bureau to stop the poaching and illegal sale of freshwater turtles. Next question, which nation has been identified by the European Parliament as a state sponsor of terrorism? Answer is Russia. Russia has been labeled as a state sponsor of terrorism by the European Parliament. It has claimed that by attacking civilian targets in Ukraine such as hospitals, schools and shelters, it was breaking international law. Despite the lack of supportive legislative structure, the European Union has already placed unprecedented penalties on Russia for its invasion of Ukraine. Eighth question, name the bank that recently partnered with the National Payments Corporation of India to introduce FirstTap, India's first debit card with a sticker system. Answer is IDFC First Bank. FirstTap, India's first sticker-based debit card was introduced by IDFC First Bank and National Payments Corporation of India to enable transactions by tapping the sticker on a point of sale terminal with near-field communication capability. Ninth question, what was the focus of the 2022 World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, which was marked on November 16th around the world? Answer is Your Lungs for Life. On November 16, 2022, the third Wednesday in November every year, people all over the world marked World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day to promote awareness of one of the most common diseases in the world. In 2022, World COPD Day will focus on Your Lungs for Life. On November 20, 2002, the first World COPD Day was observed. 10th and last question, which state government just launched the AMLAN Anemia Mukta Lakhya Abhiyan mission to eradicate anemia in November 2022? Answer is Odisha. The Chief Minister of Odisha, Navin Patnaik, essentially began the AMLAN Anemia Mukta Lakhya Abhiyan, a multifaceted effort to ensure the complete eradication of anemia among women and children in Odisha. Dear friends, this was our daily current affair update quiz. For more such quizzes, do stay tuned to us. Thank you so much.